शांति। अभी हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी पधारे हैं। आप बाप दादा के बहुत विशेष रतन हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, हम सबका अभिनंदन है। वैसे तो भाई साहब का बायोडाटा बहुत लेंथी है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी आपका कुछ परिचय देने का। आपका नाम सुनते ही सबके दिलों को राहत मिलती है, एक बहुत सूदिंग फीलिंग, एक सिक्योर फीलिंग हमारे मन में आती है। आप सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन हैं, बहुत सारी डिग्रीज हैं आपके पास। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी MBBS और उसके बाद इंटरनल मेडिसिन में MD की है, FCCP कार्डियोलॉजी और भी बहुत सारी डिग्रीज हैं। आप दिल वालों के डॉक्टर हैं, बाबा कहता है ना, दिल वालों के डॉक्टर हैं। बहुत गहरी गहरी बातें इतने सहज साइंटिफिक तरीके से बताते हैं कि हर एक साधारण से साधारण आत्मा के वो अंदर जाती हैं। आपकी क्वालिटीज आपकी सेवाओं से प्रत्यक्ष होती है, अनेक आत्माएं आपसे लाभान्वित हो चुकी हैं। प्यारे बाबा ने जो आपको दिव्य बुद्धि दी है, आपकी प्रतिभाएं, उनको यूज करके आप मेडिकल साइंस की फील्ड में बाबा के ज्ञान को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। विश्व भर में बाबा के नाम को आपने रोशन किया है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे आप रिसर्च कर रहे हैं पिछले लगभग 15 सालों से, और 6000 से ज्यादा पेशेंट्स आपने ट्रीट किए हैं बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी स्टंट के। हार्ट पेशेंट्स को आपने नया जीवन दान दिया है। बाबा की प्रत्यक्षता का आप विशेष टूल हैं और बहुत सारे अवार्ड्स आपको प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ मुख्य हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने आपको एक्सीलेंस इन कार्डियोलॉजी में 2008 में आपको सम्मानित किया, अवार्डेड बाय हर, आपको सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको दिया गया, आपकी कंट्रीब्यूशन इस प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की फील्ड में जो रही, बाय एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2006 में। इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलिंग इन मेडिसिन फॉर द 21st सेंचुरी अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको दिया गया। 2000 मिलेनियम मेडल ऑफ ऑनर फ्रॉम ABI USA इन होलिस्टिक हेल्थ केयर। डॉक्टर सुशीला ठक्कर नेशनल अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन योगा अवार्डेड बाय एसोसिएशन फिजिशियंस ऑफ इंडिया फॉर कंट्रीब्यूटिंग रिसर्च आर्टिकल्स फॉर जर्नल ऑफ API, और इस तरह के बहुत सारे अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। और आज हमारे बीच में आप रखेंगे पवित्रता की गहराई क्या है, इसकी डेप्थ, इस टॉपिक को हमारे बीच में शेयर करेंगे। तो सुनेंगे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से।
ओम शांति। पवित्रता की गहराई, इस विषय पर हम चर्चा करें, रूढ़िहान करें। इसके पहले हम सभी फिर एक बार दोबारा से परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में बैठते हैं, अपने आप को एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करते हुए, और साथ जो एनर्जी कहो, गुण कहो, मुझ आत्मा से सारे शरीर में जा रहे हैं। परमात्मा पिता हमसे कितने दूर है, परमधाम में कितने दूर है हमसे, सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। सोचा और पहुंचे ना, सोचा और पहुंचे, तो सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। और हम परमपिता परमात्मा शिव को साथ में इमर्ज करके, शिव बाबा सात गुणों का सागर है, उनसे सातों गुण मुझ आत्मा में आ रहे हैं और मुझ आत्मा से सारे शरीर में जा रहे हैं। इसी संकल्प में 2 मिनट के लिए स्थित हो जाएंगे। ठीक है,
Thank you.
शांति। पवित्रता की गहराई, पवित्रता शब्द ही हमारे बुद्धि और मन को कैसा महसूस कराता है। पवित्रता माना शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता माना सत्यता, ट्रूथफुलनेस। पवित्रता जो शब्द है, आपने सभी ने इसकी परिभाषा तो बहुत बार पढ़ी होगी, बाबा की मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में और साकार मुरलियों में इसके बारे में बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। बाकी पवित्रता शब्द जो है, ब्राह्मण जीवन माना ही पवित्र आत्मा। अगर हमारे अंदर पवित्रता नहीं है तो हम ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण शब्द के अगर गुह्य अर्थ में जाएं, जैसे ब्रह्मा शब्द का गुह्य अर्थ क्या है, ब्रह्मा माना, ब्रह्म माना बड़ा, बड़ी, बेहद, विशाल, तो मतलब बेहद की मां, सारे विश्व की मां, सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं की मां। और ब्राह्मण माना ब्रह्म माना बेहद, अर्थात जिसका मन और बुद्धि बेहद में रहे, है ना, तो ब्राह्मण है ना। तो ब्राह्मण माना ये शरीर हद है, शरीर के संबंध हद में है, शरीर के पदार्थ हद में है, किंतु आत्मा बेहद है, शिव बाबा बेहद है, परमधाम बेहद है। हमारे बाप से संबंध कितने हैं, हद में है कि बेहद है? जो भी संबंध चाहो हम बाप से निभा सकते हैं, ना आज की मुरली में भी हमने सुना, साजन का संबंध, बाप का संबंध, कलम ने बाबा से मुरली सुनी, बाबा के जो महावाक्य सुने, तो बाबा से हर संबंध जहां चाहो जब चाहो हम निभा सकते हैं। बाबा मुरली में कहते हैं, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही पवित्रता है। अगर पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। जब जीवन की बात हम कर रहे हैं तो जीवन माना, जीवन सदा होता, कभी कभी होता है, जीवन सदा होता है, कभी कभी होता है। तो जब ब्राह्मण जीवन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पवित्रता भी सदा हो। अब मैं अभी, हम लोग अभी उड़ीसा गए थे, तो उड़ीसा में एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चर था, तो मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर ने मुझे उठ के पूछा कि आप मुझे बताएं कि पवित्रता क्या चीज है, प्योरिटी क्या है। वैसे तो हम परिभाषा सभी जानते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वपन तक भी पवित्रता, उसमें भी हमारा अपवित्र संकल्प भी ना आए। किंतु बाबा ने और गहरा डेफिनेशन क्या दी थी, बाबा ने कहा था, बच्चे वो तो पुरानी डेफिनेशन है, अभी व्यर्थ संकल्प आना भी अपवित्रता है। मन में ये चलना, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा कैसे हो गया, ब्राह्मण होके भी ऐसा करते हैं, ऐसा संकल्प चलना भी अपवित्रता है। क्या, क्यों, कैसे, वैध संकल्प है ना, क्योंकि ये ड्रामा बना बनाया है, उसमें हम क्वेश्चन रेज करें तो वो भी अपवित्रता है। और पवित्रता खाली काम विकार की एब्सेंस नहीं, क्रोध करना भी अपवित्रता है। किसी को हम हर्ट कर रहे हैं, लोभ करना भी अपवित्रता है, किसी के प्रति अटैचमेंट रखना, मोह रखना भी अपवित्रता है, किसी के प्रति लगाव झुकाव रखना या किसी के प्रभाव में आना भी अपवित्रता है, और अहंकार में आना भी अपवित्रता है। पांचों विकार और उनका अंश, किसी के भी प्रभाव में आना अपवित्रता है। तो ये पवित्रता की, किंतु मुझे जो उस प्रोफेसर ने डेफिनेशन पूछी, क्योंकि वो तो डॉक्टर्स हैं, वो तो लॉजिकल लोग होते हैं, हर बात में लॉजिक चाहिए उनको, तो मुझे एक सबसे अच्छी जो डेफिनेशन लगती है पवित्रता की, वो ये लगती है कि पवित्रता माना मैं आत्मा दूसरे को भी आत्मा देखूं, मैं आत्मा, मैं अपने को आत्मा देखूं, दूसरे को भी आत्मा देखूं। जब हमारी ये स्थिति बने तो है संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता बिगिनिंग है और पावनता एंड है। पवित्रता हम शुरुआत करते हैं जब बाबा के बच्चे बनते हैं, जैसे आपने सुना होगा सोल कॉन्शियस स्टेज, आत्मिक स्थिति और बीज रूप स्थिति में क्या फर्क है, आत्मिक स्थिति बीज रूप स्थिति में क्या फर्क है। आत्मिक स्थिति की हम शुरुआत करते हैं, मैं आत्मा हूं, यह अभ्यास से शुरू करते हैं, इस देह के अंदर मैं चैतन्य आत्मा हूं, आत्मा चमक रही हूं, और इस अभ्यास को करते करते एक प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं, पहले विक्रमाजीत बनते हैं, फिर कर्मातीत बनते हैं, फिर फरिश्ता बनते हैं, और लास्ट में जाके बीज रूप स्थिति बनती है। तो जैसे बीज रूप स्थिति क्या है, बीज रूप स्थिति भी आत्मिक स्थिति की संपूर्णता है, जब देह का भान बिल्कुल खत्म हो जाता है उसको बीज रूप स्थिति कहते हैं, राइट, बिल्कुल निर्विकारी स्थिति। तो ऐसे ही पवित्रता की, पवित्रता शुरुआत है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, अपने स्मृति को इमर्ज कर रहे हैं हम, क्योंकि हम आधा कला अपवित्र रहे, काम क्रोध लोमो अहंकार के वश में रहे, किंतु अभी हम क्या कर रहे हैं, बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, बच्चे तुम तो हो ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा, तुम्हारा अनादि और आदि स्वरूप क्या है, पवित्र था। ये तो बीच में मध्य में जब आप द्वापर युग में आए तो आपके अंदर ये आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होने से आपके अंदर धीरे धीरे विकार आना शुरू हुए और तुम आत्मा अपवित्र बन गई, अंत में फिर तुम पवित्र बन जाओगे। तो बाबा हमको स्मृति दिला रहे हैं, तुम ही देवता थे, तुम ही मेरे साथ अनादि स्वरूप में पवित्र थे, पावन सत्व प्रधान थे, आदि स्वरूप में भी पावन सत्व प्रधान थे, और आज तुम्हारी जो पूजा हो रही है मंदिरों में वो भी तुम्हारे पूज्य पवित्र स्वरूप की पूजा हो रही है, और तुम्हारा फरिश्ता स्वरूप भी पवित्र होगा। तो जो हमारे पांचों स्वरूप हैं, जो बाबा कहते हैं पांच स्वरूप की ड्रिल करो, ये कैसे हैं स्वरूप पांचों, पवित्र है, इसमें से कोई अपवित्र भी है, पवित्र है सारे या अपवित्र भी हैं, पांचों के पांचों पवित्र हैं, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा है ना, ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा, और न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, और लास्ट में फिर अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। तो पांचों स्वरूप हमारे पवित्र स्वरूप हैं, इस पवित्रता के आधार पर ही हम पूज्य बनते हैं। तो अब हम इसे थोड़ी से और गहराई में चलते हैं, पहले हम परिभाषा के बारे में थोड़ा गहराई से बात कर लें, फिर हमें पवित्र कैसे बनना है, कि हम पवित्र बने कैसे। ये तो बात हमने जान ली कि पवित्रता से ही हम पूज्य बनेंगे, पवित्रता से ही हम देवता बनेंगे, पवित्रता से ही हम फरिश्ता बनेंगे। तो इसकी हम गहराई में चलें, पवित्र हम बने कैसे, कैसे हमारे जीवन में किस किस प्रकार की पवित्रता आनी चाहिए और वो कैसे हमारे जीवन में आए, मत पवित्र स्टेज से पावन कैसे बने, क्योंकि पावन बनने के बाद ही हम बाबा के साथ वापस घर जाएंगे। तो आज हम उसी को गहराई से, अगले कुछ मिनट गहराई से हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो पवित्रता की डेफिनेशन जैसे मैंने बताई, मनसा, दोबारा से मैं इसको क्लियर करता हूं, मनसा, मनसा माना संकल्प रूप में भी, वाचा माना बोल में भी, कर्म माना, साकार कर्म में भी और संबंध संपर्क सोपन में भी अपवित्रता ना हो। अर्थात सबसे पहले हम दृढ़ता से, जब बाबा के बच्चे बनते हैं हम दृढ़ता से एक व्रत लेते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं कि हम घर परिवार में रहते हुए, पति पत्नी होते हुए भी अपने आप को क्या समझेंगे, ब्रह्मचारी बनकर के रहेंगे। हम अब दूसरे को आत्मा भाई भाई के रूप में देखेंगे। अगर साकार परिवार के रूप में देखें तो भाई बहन के रूप में देखेंगे। ये दृढ़ता से हम प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा भी हम ऐसी करते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसमें हमें थोड़ा दृढ़ता अपनानी होती है और इसके लिए हमें अपने अंदर कुछ परिवर्तन भी लाने पड़ते हैं। कुछ परिवर्तन कौन कौन से लाने पड़ते हैं? सबसे पहले तो हमें अपनी तन की पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। पहले मैं चार प्रकार की पवित्रता की आपसे बात करूंगा। तन की पवित्रता पहली, दूसरी मन की पवित्रता, तीसरी अन्न की पवित्रता और चौथी संग की पवित्रता। और एक पवित्रता और हम कह सकते हैं धन की पवित्रता। अगर हम पांच पवित्रता का ध्यान रखते हैं तो हमारी यह प्रतिज्ञा अटल रहती है। और यह प्रतिज्ञा अटल रहती है तो ब्राह्मण जीवन के जो हमारे नियम और मर्यादाएं हैं उस पे हम एक्यूरेट चल सकते हैं। सबसे पहली बात तो है, हम आते हैं तन की पवित्रता पर। इससे भी पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम ब्राह्मण जो है वो कौन है? क्या जैसे सपोज आप में से कोई है, कोई भी भाई या बहन है, वो ब्राह्मण है या आत्मा ब्राह्मण बनी है? कौन ब्राह्मण बना है? शरीर ब्राह्मण बना है कि आत्मा ब्राह्मण बनी है या दोनों ब्राह्मण बने? दोनों का कंबाइंड रूप ब्राह्मण बना है या आत्मा सिर्फ ब्राह्मण बनी है? ब्राह्मण शब्द की परिभाषा मैंने क्या बताई आपको? ब्राह्मण माना बेहद मन और बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि और मन किसमें हो, सदा बेहद में रहे, हद में ना रहे। हद क्या है? देह हद है, देह के संबंध हद में है, देह के पदार्थ हद में है, देह के स्वभाव संस्कार हद में है। ये देह के स्वभाव क्या होते हैं? पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और देह के जो संस्कार हैं, देह के संस्कार मतलब आदतें, वो होते हैं दस। उसके दस आपने पहले भी सुने हो शायद किसी क्लास में, आलस्य है ना। पहला जो है आदत है देह की, क्या आदत है? आलस्य। दूसरी आदत है अलबेलापन, केयरलेसनेस, चलो आज निकल कर लेंगे, चलो मुरली अभी 7 बजे की बजाय चलो 8 बजे पढ़ लेंगे। ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या बताया था? बेहद, जब इसकी बुद्धि और मन बेहद में रहे। तो तन की पवित्रता हम बाद में लेंगे, किंतु पहले बुद्धि की पवित्रता की बात करते हैं। बुद्धि की पवित्रता और मन की पवित्रता, बाद में तन की और संग की और अन्न की पवित्रता पे आएंगे, फिर बाद में धन की पवित्रता पे आएंगे। तो पहले बुद्धि जो है, अगर हम इसकी थोड़ी गहराई में जाएं तो जो आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार, बुद्धि आत्मा की पहली शक्ति है। और बुद्धि के भी चार एस्पेक्ट हैं। कल भी बाबा ने कहा कि बाबा दिल में रहता है, बाबा को दिल ही पसंद आती है, दिल में दिलाराम को बसा लो। तो दिल जो है बुद्धि का एक एस्पेक्ट है। सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वो दिल है, कॉन्शियसनेस। इसे इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। तो जो आत्मा है अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, उससे ये 7 एनर्जी निकलती रहती हैं। तो 7 एनर्जी निकलने से जो पहली जो उसके इमीडिएट एस्पेक्ट है बुद्धि उसका, आत्मा का, उसे दिल कहते हैं। और इन 7 एनर्जी से ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद शक्तियों से मिलकर के इन, जब ये आत्मा दिल में 7 एनर्जी भरपूर होती हैं, तो फिर उससे विवेक बनता है। विवेक, सेकंड एस्पेक्ट विवेक माना विजडम, परखने की शक्ति, विवेक माना परखने की शक्ति, और विवेक के आधार पे कि परखने की शक्ति माना ये गलत है या ठीक है, उसके आधार पे निर्णय करने की शक्ति आती है जिसे हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धि प्रॉपर कहते हैं। और उसके बाहर सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसे हम चित्त कहते हैं। तो बुद्धि के चार एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से, पहला दिल या कॉन्शियसनेस, दूसरा विवेक, तीसरा बुद्धि प्रॉपर निर्णय शक्ति, और चौथा सबकॉन्शियस माइंड या चित्त। तो बुद्धि की पवित्रता क्या है, बुद्धि की पवित्रता है बुद्धि में सबसे पहले दिल जो है, दिल में क्या हो, सातों गुण भरे हुए हों, ज्ञान, ज्ञान माना क्या, ज्ञान माना सार रूप में ज्ञान माना क्या, ABCD है ना, आत्मा बाबा कनेक्शन और ड्रामा, अर्थात मैं अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु परमात्मा के संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, सी फॉर कनेक्शन, अर्थात मुख्य नौ संबंध, मां का संबंध, बाप का संबंध, शिक्षक का संबंध, सतगुरु का संबंध, बंधु, बंधु माना बड़ा भाई, सखा माना दोस्त, साजन, सर्जन और बच्चा। वैसे तो और भी बहुत सारे संबंध निभा सकते हैं किंतु नौ संबंध तो मुख्य है, उसका अनुभव होना चाहिए। और डी फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक में हर आत्मा एक्टर है, करण सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, मेरा बाबा इसका डायरेक्टर है और कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो जब जितना हम ABCD इस ज्ञान, जितना इस आत्मा से ये ज्ञान इमर्ज रूप में रहता है, एनर्जी इमर्ज रूप में रहती है, उतना ही हमारी मन और बुद्धि पवित्र होती जाती है। मैं आत्मा हूं, आप आत्मा है, पत्नी आत्मा है, बच्चे आत्मा है, मेरी सास आत्मा है, मेरा ससुर आत्मा है, मेरे माता पिता आत्मा है, हम सब ज्योतिबिंदु सितारे एक बाप के बच्चे हैं, हमारे हम सबके सर्व संबंध उसके साथ हैं। और डी फॉर ड्रामा, हम सब आपस में एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं, कर्म सिद्धांत के अनुसार दुख दिया हुआ किसी को तो दुख मिल रहा है, किसी को गाली दी हुई है तो गाली मिल रही है, किसी को सुख दिया हुआ तो सुख मिल रहा है, किसी की महिमा की है तो वो महिमा हमें मुझे वापस कर रहा है, राइट। तो अभी तक जिसने भी जो कुछ किया है वो अच्छा हुआ है, अच्छा किया है, हिसाब किताब चुकता हुआ है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। इससे मन पवित्र होता नहीं होता बताओ, ये सोचने मात्र से मन पवित्र हुआ नहीं हुआ, ये तो हमारा मन कैसा होता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके बगैर तो मैं रह नहीं सकता, उसके बगैर तो मैं रह नहीं सकती, नहीं ऐसा होता है। तो अपवित्रता ये आती है जब हम देवहान में आकर एक दूसरे को देखते हैं तो हमारे अंदर अपवित्रता आती है, उसके किए हुए कर्म याद आते हैं अच्छे या बुरे, यही अपवित्रता है। इसी के कारण लगाव पैदा होता है, इसी के कारण झुकाव पैदा होता है, इसी के कारण प्रभाव में किसी के प्रभाव में आते हैं, इसी कारण किसी टकराव में आ जाते हैं, यही अपवित्रता है। तो जितना अधिक हम ABCD को रिवाइज और रियलाइज करते हैं, विजुअलाइज नहीं, इमेजिन नहीं करना है, रियलाइज करो, रियल को रियलाइज करते हैं, तो उतना अधिक हमारे अंदर दिल में शुद्धता पवित्रता आती जाती है, पवित्रता से शांति आती जाती है। देखो, देखिए अभी आप ये सोचिए, अंदर ABCD ज्ञान आपके अंदर है, उतना अधिक आपके अंदर पवित्रता आई, शांति आई, उतना अधिक रूहानी प्यार पैदा हुआ आपस में, उतना अधिक अतिंद्रिय सुख की अनुभूति आई, उतना अधिक आनंद की अनुभूति आई, और आनंद के आधार पर हमारा विवेक ने क्या काम किया, विजडम ने काम किया, तुरंत एक सेकंड में परख लिया कि मुझे आनंद किसमें आता है, ये जिसमें आनंद आया वो ठीक है, जिसमें आनंद नहीं आया वो गलत है, बुद्धि ने तुरंत निर्णय कर लिया। और जैसे ही बुद्धि ने निर्णय किया वो चीज हमारी, तुरंत निर्णय माना बटन दबा दिया, वो चीज मेमोरी में चली गई। उसके बाहर मन है, मन में, मन क्या है, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, तो मेमोरी में चली गई। स्मृति के आधार पर वृत्ति बनती है, अर्थात हमारा एटीट्यूड बनता है और वृत्ति से वायुमंडल बनता है हमारे आसपास। इस वायुमंडल को ही ऑरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं, प्रभा मंडल कहते हैं। और जैसी हमारी वृत्ति होती है उसके अनुसार भावना पैदा होती है, भावना से वाइब्रेशन जाते हैं दूर दूर तक, हजारों किलोमीटर तक भी जाते हैं। और जैसी हमारी भावना होती है फिर वैसे विचार उठते हैं, संकल्प उठते हैं, और संकल्पों के आधार से संकल्प कहां तक जाते हैं, संकल्पों का असर कहां तक होता है, सारी सृष्टि पर पड़ता है, सारे पांचों तत्वों पर पड़ता है, हर मनुष्य पर पड़ता है, इवन पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। तो ये हमारा बुद्धि और मन के चार चार एस्पेक्ट है। अब जब हम सत्ययुग त्रेता में थे तो हमारी आत्मा सात सतो प्रधान थी, पावन सतो प्रधान थी, दिल सातों गुणों से भरपूर था और हमारा विवेक ईश्वरीय था। मतलब एक सेकंड में हम परख लेते थे राइट रॉन्ग क्या है, और निर्णय एक सेकंड में करते थे, और सारी फाइलें कहां जाती थी, मेमोरी में जाती थी। वही सातों गुण की फाइलें, सातों गुण हमारी स्मृति में इमर्ज हो जाते थे और चित्त हमारा शांत एकाग्र और आनंदमय था। तो सत्ययुग में हम कैसे थे, हमारा सच्चित आनंद थे, सच्चित आनंद स्वरूप थे, दिल में सत्य था तो चित्त में आनंद स्वरूप था, और हमारी स्मृति में मैं आत्मा हूं यह संस्कार रूप में था। वृत्ति सबके प्रति आत्मिक वृत्ति थी, भावना सबके प्रति शुभ थी, संकल्प शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली और कल्याणकारी थे, और हमारी चित्त क्या थी, हमारी काया कैसी थी, कंचन काया थी, सत्व प्रधान थी। किंतु जब द्वापर युग आया तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, 50% से कम हो गई थी, मन राजा बन गया तो देवता की बजाय हम मनुष्य कहलाने लगे, और सबसे पहली चीज जो कहती है अपनी देह पर ध्यान गया हमारा, पांच तत्वों की बनी देह, हमारे साथी हमारे साथ में रहने वाले उनकी देह पर ध्यान गया, और सबसे पहले काम विकार आया। काम विकार आते ही क्या हुआ, हमारी कौन दिल में क्या देह चली गई, देह के साथ पांच प्रकृति के पांचों तत्व चले गए, देह के संबंधी चले गए, देह के स्वभाव, देह के अंदर जो विकार थे काम क्रोध, वो अंदर धीरे धीरे अंदर हमारी दिल में आने लगे, और देह के पदार्थ हमारी दिल में कॉन्शियसनेस में उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। तो हमारा विवेक कंफ्यूज हो गया, जब विवेक कंफ्यूज हुआ तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही कि मैं करूं कि नहीं करूं। अब सपोज आपका बच्चा है, आपको उससे बहुत अटैचमेंट है, बच्चा गलत कर रहा है तो भी आप उसको कुछ नहीं बोलते हैं। कई बार इसलिए नहीं बोलते हैं कि इसके पापा मैं इसको कुछ बोलूंगी तो वो पापा नाराज होंगे, या पिताजी इसलिए नहीं बोलते कि अगर वो उसको मैं कुछ बोला तो उसकी मम्मी नाराज हो जाएगी। तो वो फाइल कहां जाएगी, आप जानते हैं बच्चा गलत कर रहा है फिर भी वो निर्णय नहीं ले पा रहे, तो वो फाइल कहां जाएगी, वो चित्त में जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। ऐसे बहुत सारी फाइलें धीरे धीरे हम क्या करने लगते हैं, हमारी फाइलें बहुत सारी बातें वो चित्त में जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, अनसेव्ड फाइल्स, उससे हमारा चित्त चंचल होने लगता है, अशांत होने लगता है। और क्योंकि हमारे दिल में देह अभिमान घुस गया है, पांच विकार घुस गए, तो स्मृति में वही रिकॉर्ड होते हैं, वृत्ति हमारी देह वाली बन जाती है, भावनाएं हमारी लगाव झुकाव प्रभाव वाली बन जाती है, और संकल्प उसी अनुसार चलते हैं। तो जैसे इस तरह से जब हमारा धीरे धीरे दिल में देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ अंदर आ जाते हैं, और इसी को कहते हैं अपवित्र आत्मा। जब शिव बाबा जब आते हैं धीरे धीरे, द्वापर युग में ऐसा होता है, त्रेता में आते आते तो आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है, आत्मा के सातों गुण लगभग ना के बराबर हो जाते हैं, दिल में सिर्फ इन्हीं का अधिकार हो जाता है, देह देह के संबंधों का, देह के पदार्थों का। अब देखो थोड़ी सी बात हमारे देह में कुछ हो जाता है, कहीं पे थोड़ी फुंसी भी हो गई, मुंह पे काला सा दाग भी कोई आ गया, सारा टाइम हमारी दिल में क्या हो जाता है, उसी के बारे संकल्प चलते हैं, नहीं चलता है। हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, या कोई पड़ोसी, कोई हमारा बहुत संबंधी, हमारी माताजी पिताजी, कोई भी, तो सारा संकल्प उसके बारे चलते रहते हैं? नहीं चलते। या सपोज कोई चीज हमारी थी, खो गई है, किसने उठा ली, तो सारा टाइम मेरी चीज खो गई, पता नहीं कहां गई, मिल नहीं रही है ना, सारा टाइम वही विचार चलते रहते हैं। भले क्लास में बैठे हो तो भी वही विचार चलता रहेगा। आपकी चप्पल भी किसी ने उठा लिया ना सुबह, तो भी आपका सारा संकल्प उसी में चलता रहेगा, नहीं चलेगा। मैं दिल में चप्पल भी गई हुई है ना, नहीं ऐसा, छोटी सी चीज भी दिल में चली जाती, देख के पदार्थ दिल में चले जाते हैं, फिर हमारा विवेक कंफ्यूज रहता है। बैठे हैं सामने क्लास में, मुरली चल रही है, समझ नहीं आ रही है, टीचर दादी पूछ लेती है आपने क्या सुना, बाबा ने क्या कहा, पता नहीं क्या, चप्पल के बारे संकल्प चले जा रहा है ना, है ना, छोटी सी बात के बारे संकल्प चलता है ना, हमारा दिल उसी से ऑक्यूपाई है, तो विवेक काम नहीं कर रहा, विजडम काम नहीं कर रही है, निर्णय शक्ति काम नहीं कर रही है, और चित्त में विचार चलते जा रहे हैं एक के बाद एक, एक। योग करने, जब योग 3 मिनट योग हुआ तो योग लगा ही नहीं ऐसा होता है, क्यों, चित्त अशांत था। जैसे शांत, जैसे सब लोग शांत हो गए, और भी चित्त चंचल हो गया, ऐसे ही हमारी बात होती है। अब जब शिव बाबा जब कलयुग के अंत में तो आते आते सिर्फ विकार ऑक्यूपाई कर लेते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को सिर्फ विकार ऑक्यूपाई कर लेते हैं दिल, जब बाबा आते हैं तो बाबा सबसे पहले दिल को ही कनेक्शन में लेते हैं, दिलाराम उसका नाम है ना, वो दिल पे सबसे बड़ी बात करते हैं दिल के साथ। तो हमें क्या कहते हैं बच्चे, सबसे पहले बाबा का फरमान क्या है गीता में, यही बाबा का फरमान है बच्चे, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार और देह के पदार्थों को बुद्धि से भूल, बुद्धि से छोड़ो, पहले बुद्धि से इन 4 चीजों को छोड़ो, तब अपने को आत्मा समझ पाओगे। नहीं तो अधिकतर हम क्या करते हैं, अपनी देह में भी बुद्धि लगा के रखते हैं, संबंधों में बुद्धि लगा के रखते हैं, देह के स्वभाव संस्कार, मुझे तो चाहिए, मेरा तो स्वभाव शॉर्ट टेम्पर्ड है, मैं तो बहुत सेंसिटिव हूं, मैं तो बहुत इमोशनल हूं, मुझे तो टीवी में वो सीरियल देखना ही है, बहुत अच्छा सीरियल है ना, नहीं बस एक सीरियल देखना है बाकी नहीं देखना है ना, नहीं ऐसा, इसमें कोई बुरी बात नहीं देखना ना, इसमें तो अच्छी अच्छी बातें आती है ना, नहीं तो ऐसा हम मन में पक्का बना लेते हैं, तो ऐसे दिल में शिव बाबा नहीं आता है। कल बाबा ने कहा ना, बाबा के दिल में बच्चे और बच्चे को दिल में बाबा समाया हुआ है, तो बाबा के दिल में बच्चे, बच्चे ऐसे बच्चे के दिल में बाबा समाएगा, सीरियल समाएगा, क्या समाएगा बताओ, क्या समाएगा, सीरियल समाएगा, बाबा समाएगा, ये जो है ये पवित्रता की बात है, पवित्र आत्मा माना जिसके दिल में ना देह का देह हो, ना देह का संबंध हो, ना देह का स्वभाव संस्कार हो, ना देह का पदार्थ हो। जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे हम, तब तक अपने को आत्मा नहीं समझ सकेंगे। कई बार मुझे आश्चर्य होता है, मैं भी उसमें हूं, कि हम ABCD पढ़ लेते हैं बचपन में ना, जब क्लास में जाते हैं, पहली क्लास में ही, नर्सरी में ही, KG में ही, ABCDEFZ तक पढ़ते हैं, और फिर जैसे जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, MBBS में जाते हैं, MD करते हैं, जो भी अपने अपने क्वालिफिकेशन हम करते हैं, तो हम दोबारा कभी ये करते हैं कि कोई किताब पढ़ने से पहले A for Apple, B for Bat, C for Cat करते हैं क्या, कि तु हम यहां पर 30 साल क्यों ज्ञान में चलने के बाद भी जब भी योग करने बैठते हैं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, नहीं करते हैं आप लोग, हम नहीं करते ऐसा, करते नहीं करते बताओ, ये ऑटोमेटिक याद रहता है मैं आत्मा हूं, बताओ अग्निहोत्री जी, याद रहता है कि करना पड़ता है, करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमने ये नक्की नहीं किया कि मैं दे, अपने आप से बैठ के बातचीत नहीं की है कि सचमुच मैं देह नहीं हूं, देह तो यहीं छूट जानी है, मैं तो आत्मा, मैं इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, मैं स्थूल देने स्थूल देखो चलाने वाले अति, मैं आत्मा यहां बैठ के शरीर को चला रही हूं, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूं, मैं आत्मा हार्ट को चला रही हूं, मैं आत्मा सांस ले रही हूं फेफड़ों से, मैं आत्मा पेट से खाना पचा रही हूं। ये चलते फिरते अभ्यास हो, मैं आत्मा ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद शक्तियों से शरीर को चला रही हूं, ज्ञान से दिमाग को चला रही हूं, पवित्रता से आंखों से पवित्रता के गुण के कारण देख पा रही हूं, पवित्रता के कारण मैं अपने इम्यून सिस्टम को चला रही हूं, शांति से फेफड़ों में सांस ले रही हूं, प्रेम से हार्ट को चला रही हूं, खुशी से लीवर और पेट को चला रही हूं, आनंद के कारण मैं अपने हार्मोन्स का सिस्टम को ठीक रख पा रही हूं, शक्तियों से अपनी ज्वाइंट्स को ठीक रख रही हूं, हड्डियों को ठीक रख रही हूं। तो जब तक मैं चलते फिरते अभ्यास ना हो, हर समय अभ्यास ना हो, तब तक अपने को आत्मा नहीं समझ सकते। एक एक संबंध की अनुभूति ना हो जब तक बाप से, मां का संबंध क्या है बाबा से, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान, शिव बाबा ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा मां के थ्रू, ब्रह्मा बाबा के थ्रू मुझे मां की पालना और प्यार दे रहे हैं, और जैसे ही बाबा मुझे ब्रह्मा बाबा के थ्रू अडॉप्ट करते हैं, मुझे दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे देते हैं, गिफ्ट में दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट किसमें देते हैं, बर्थडे की गिफ्ट देते हैं। वो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट क्या करती है, एक इस दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में बैठो और एक सेकंड में बाप दादा की गोद में पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में। और बाबा कैसे बैठा है, बाहें पसारे है ना, एकदम बाबा की गोद में जाके उतर जाते हैं। बाबा कहते हैं आओ बच्चे आओ, लाडले बच्चे आओ, मीठे बच्चे आओ, जैसे कल बाबा मुरली में कह रहे थे ना, मेरे लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे है ना, वाह बच्चे वाह। तो बाबा हमसे खाली बैठा है, हम सिर्फ हमारी वेट कर रहा है। तो ये हम अपने आप को मां का संबंध यूज करें, जब मां की गोद में पहुंच गए तो मां हमें प्यार करती है ना, पूछती है बच्चे कैसे हो, फिर बाप से मिलाती है ना, शिव बाप से मिलाती है। ब्रह्मा बाप क्या करता है, शिव बाप से मिलाता है। वो शिव बाबा क्या करता है, शिव बाबा हमको बाप के रूप में तीसरा नेत्र वरदान में देता है। तीसरे नेत्र से हम क्या कर सकते हैं, अपने को आत्मा देखते हैं, अपने शिव बाप को देखते हैं, वो भी सितारा मैं भी सितारा। कर्मों की गुह्य गति को देखते हैं कि ये मैं कर्म करता हूं इसका ये फल है, इसका ये कर्म किया इसका ये फल है। मुझे को कष्ट हो रहा है, मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, बाबा को पूछता हूं बाबा मुझे हार्ट में दर्द क्यों होता है, बाबा बताता है बच्चे तुझे हार्ट में दर्द इसलिए होता है कि दूसरे के दिल को दुख दिया हुआ है ना। या कोई भी तकलीफ होती है ना मुझे, मैं बाबा से पूछता हूं बाबा मुझे ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोलता है, मुझे ऐसा व्यक्ति इस तरह से क्यों बिहेव करता है, बच्चे तुमने इसको तंग किया हुआ पिछले जन्म में या इस जन्म में इसके साथ ऐसा बिहेव किया है। तो बाबा एक एक राज बताता है, कर्मों की गुह्य गति बताता है। बाबा से हम ऐसे ही बात कर सकते हैं जैसे आपस में बातचीत करते हैं। आप सभी बात करते हो बाबा से जाके सूक्ष्म वतन में, जो बाबा से बात करते हैं हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। तो संकल्पों के द्वारा हमारी ऐसी बातचीत होती है, और बाबा कि गोद में जाने के बाद ही बाबा हमें बाप से, मां हमें शिव बाबा से मिलाती है, टीचर से मिलाती है। टीचर हमें क्या करता है, त्रिकालदर्शी बनाता है। तो बाप हमें क्या करता है, त्रिनेत्री बनाता है, और टीचर हमें क्या करता है, त्रिकालदर्शी बनाता है। और सतगुरु हमें क्या करता है, क्या करता है, त्रिलोकी नाथ बना देता है। क्या बना देता है, तीनों लोकों में जाने का एक क्या कहते हैं, मल्टीपल एंट्री वीजा, जब चाहो जितना समय चाहो वहां जाके रहो। सुखधाम में जाना सुखधाम में भी जाओ, ठीक है। तो इस तरह तीनों स्वरूप का अनुभव करते हैं। और बंधु माना बड़ा भाई क्या करता है, छोटे भाई को क्या करता है, मैं छोटा सा हूं एक साल का और मेरे हाथ में कोई चीज है, तो क्या करेगा बड़ा भाई, क्या करेगा, दो साल का हूं तो क्या करेगा, बस्ता भी क्या होता है, बस्ता किस कौन देता है, मां उठा लेती है ना, या बड़ा भाई उठा लेता है। तो मेरा जो भी बोझ है मैं बाप आपको दे देता हूं, बड़े भाई के रूप में दे देता हूं। सखा के रूप में, जो बातें मैं किसी को नहीं बता सकता हूं, ना अपने मम्मी को, ना पापा को, ना बहन को, ना भाई को, ना पत्नी को, ना पति को, उसको बता सकता हूं। बाबा मुझसे, बाबा मेरे अंदर कमजोरी है, बार बार मेरे अंदर ये कमजोरी आती है, बार बार मैं कितनी कोशिश की है, 30 साल से मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं इसको निकाल दूं, निकलती नहीं है मेरे से, आज फिर ये गलती हो गई वापस। तो बाबा को बताता हूं, सखा के रूप में बताता हूं। साजन के रूप में बाबा दैवी गुणों से मुझे सजा देता है। सर्जन के रूप में जो मुझे विकार लगे ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कीड़े लगे हुए अंदर आत्मा में, उसको सफाई कर देता है। और बच्चे के रूप में जो कुछ मेरा तन मन धन, उसको वारिस बना देता हूं, उस पर वारी कर देता हूं। तो ऐसे 9 संबंधों की अनुभूति हम बाबा से करें। जितना हम इस चलते फिरते संबंध की अनुभूति, एक एक संबंध की अनुभूति का, उसका अनुभव में खो जाएं, मैं तो कहता हूं कि आधा आधा घंटा एक ही अनुभव में खो सकते हैं। जैसे हम योग करते हैं, कई कई भाई बहन कहते हैं हम योग क्या करें, आधे 5 मिनट बाद योग टूट जाता है। टूटने का मतलब ही नहीं है, संबंध से हम योग करें तो हमारा बाबा से बहुत अच्छा अनुभव होता है। मैं तो कई बार एकांत में बैठा रहता यही करता रहता हूं, चलते फिरते भी करता रहता हूं, वॉकिंग करते करते भी यही करता रहता हूं। तो आप ये अभ्यास करें, और तब हमारे अंदर जब ऐसा अभ्यास हम करेंगे तो फिर हमें दोबारा दोबारा बार ये अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, नहीं, कितने देर तक करते रहेंगे। तो जब तक फिर हमारे अंदर जब ये ऑटोमेटिक हो जाएगा दिल में हमारे, तब दिलाराम समाएगा। जब तक हम चारों चीजों को खाली नहीं करेंगे, शिव बाबा को एक दिलाराम को एक बात, जरा भी कमरा खाली चाहिए पूरा, है ना, ये नहीं कि उस दूसरा भी कोई आके बैठ जाए और शिव बाबा भी साथ में आ जाए, ऐसा अलाउड है क्या? अलाउड है? बाबा कहता है जब तक तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए, जब तक तुम्हारे अंदर ये नहीं आया, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाबा ये नहीं कहते कि मेरा तो एक मेरी पत्नी और साथ में तुम भी अलाउड है, ऐसा नहीं है, है क्या? साथ में मेरा बच्चा या बच्ची और साथ में तुम भी हो, ऐसा है क्या? नहीं, दिल में सिर्फ एक बाबा चाहिए। अपने कमरे को बिल्कुल खाली करो, तब दिल में बाबा आता है। और बाबा कौन है? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम सुखानंद शक्तियों का सागर है। जब दिल में दिलाराम आ गया तो हमारा विवेक जो एकदम कंफ्यूज हो चुका था, करूं क्या, क्या करूं क्या ना करूं, समझ नहीं आता क्या करूं, इधर जाऊं तो ये प्रॉब्लम है, इधर जाऊं तो ये प्रॉब्लम है, तो तब हमारा विवेक ईश्वरीय हो जाता है वापस, हमारा बुद्धि तब हमारी एकदम दिव्य हो जाती है, दिव्य माना दैवी गुणों पर आधारित, और तब हमारा चित्त वापस शांत हो जाता है और एकाग्र हो जाता है और आनंदमय हो जाता है। तो ये जब बुद्धि, ये है बुद्धि की पवित्रता। जब हमारी बुद्धि पवित्र होगी तब हमारा ऑटोमेटिक, हमारा स्मृतियां जो हैं वो स्मृतियों में ABCD रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी स्मृतियों में विकार रिकॉर्ड हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह, जैसे ही हम सोने जाते हैं ये विकार जागृत हो जाते हैं, सपने आने लगते हैं काम विकार के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, उठने की कोशिश करते हैं आलस्य आने लगता है, अलबेलापन आने लगता है, दूसरे पर दर्शन होने लगता है, वो भी तो देर तक सोते हैं, हमें क्या हो गया, हम भी थोड़ा सो जाते हैं, दूसरों को कंपेयर करने लगते हैं, ना कंपैरिजन कंपटीशन की फीलिंग आने लगती है, चिंता भय पैदा होने लगता है, ईर्ष्या पैदा होने लगती है, तो ये हमारे अंदर ऑटोमेटिक पैदा होने लगता है। तो पहले बुद्धि पवित्र बनेगी तो स्मृति हमारी क्या बनेगी, तब हमारी स्मृति में ज्ञान, ये मुरली रूपी ज्ञान ये हमारे अंदर रिकॉर्ड होगा, तब मुरली हमको याद रहेगी, और जब मुरली याद रहेगी तो हमारी वृत्ति सबके प्रति भाई भाई की वृत्ति हो जाएगी, और जब भाई भाई की वृत्ति होगी तो भावना सबके प्रति शुभ हो जाएगी, और फिर हमारे संकल्प हमेशा शुद्ध चलेंगे, श्रेष्ठ चलेंगे, कल्याणकारी चलेंगे। तो ये हो गई मन की पवित्रता। और जब हमारा मन पवित्र होगा तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर क्या होगा, शांति और सुख की फीलिंग रहेगी। पवित्रता से क्या होता है, शांति और सुख की फीलिंग, कहते हैं पवित्रता, दादी जानकी भी कभी हमारी दादी सुनाते ना कभी कि मेरे 2 बच्चे हैं ना, कौन कौन से, शांति और सुख, है ना, शिव बाबा से शादी हुई है और बच्चे कौन से हैं, 2 बच्चे कौन कौन से हैं, सुख और शांति। तो पवित्रता के 2 बच्चे हैं, सुख और शांति। शांति का मतलब ही क्या है, विचारों की हलचल नहीं, सबकॉन्शियस माइंड शांत है। और सुख का मतलब है अतिंद्रिय सुख की फीलिंग, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मरने का डर नहीं, बीमारी का डर नहीं, बुढ़ापे का डर नहीं, अतिंद्रिय सुख में खोए हुए हैं, तो वो फीलिंग हमें आएगी। तो ये निशानी है। और ऐसी आत्मा पर जरा भी किसी की किसी के भी किसी कोई कुछ भी करता है उसका असर नहीं होगा। और ऐसी आत्मा खुद तो सुख शांति में रहेगी, दूसरों को भी उससे सुख शांति की अनुभूति आएगी। अब मैं इसके ऊपर आता हूं, यहां से कैसे हमारा आभा मंडल बनता है। अब जैसे मुझे मनसा सेवा करनी, कैसे मनसा सेवा करेंगे, पवित्र आत्मा कैसे मनसा सेवा करेगी। इससे पहले भी मैं मनसा सेवा पे आऊं, इससे पहले मैं थोड़ा सा इस पे अन्न की पवित्रता की बात कर लूं। अन्न की पवित्रता, जो आज बाबा ने सारी मुरली में ये बात अन्न की पवित्रता पे बात की है, मुझे जो खाना खाना है सबसे पहले तो भोजन मेरा कैसा सात्विक भोजन होना चाहिए। सात्विक भोजन सात गुणों को बढ़ाने वाला भोजन होना चाहिए, फल सब्जी रोटी दाल दूध, ये सात्विक भोजन में आता है, ये सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन है, ठीक है। क्योंकि इसको देख करके हमें नेचर याद आती है, कोई व्यक्ति याद नहीं आता है। और शुद्ध बना बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, सबसे ज्यादा शुद्ध कौन है, एवर एवर प्योर कौन है, शिव बाबा। तो अगर हम उस एवर प्योर की याद में खाना बनाते हैं और उसकी याद में खाना खाते हैं तो वो शुद्ध सात्विक भोजन कहलाता है। तो ऐसा हमको बाबा कहते ना, तुम पहले भोग लगाते हो किंतु बाद में खाते खाते भूल जाते हो। आज मैंने फिर कोशिश किया, वैसे हम कोशिश रोज करते हैं कि मुश्किल से हम लोग तीन चार टुकड़े खाए ना रोटी के तो याद रहा शिव बाबा, पांचवें टुकड़े पर शिव बाबा गायब और मैं आराम से भोजन खा रहा हूं ना। फिर पांच टुकड़े खाने के बाद याद आया, अरे शिव बाबा तो कहां गया। तो सचमुच में हमें एक 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 टुकड़े पे पहले टुकड़ा तोड़ा, शिव बाबा को याद किया और फिर खाया। नहीं तो एक और तरीका मैंने अच्छा अपनाया था थोड़े दिन पहले, सूक्ष्म अंतर कितनी दूर है हमसे, सूक्ष्म कितनी दूर है बताइए, एक सोच की दूरी पर है ना। आप यहां से पंजाब लुधियाना रहते हो, लुधियाना कितनी दूर है यहां से, कितनी दूर है बोलो, एक सोच की दूरी पर है कि नहीं। यहां से बैठे बैठे लुधियाना पहुंच सकते हो ना, स्टेशन पे पहुंच सकते, अपने ड्राइंग रूम में पहुंच सकते हो, अमृतसर पहुंच सकते हो, जयपुर पहुंच सकते हो, एक सोच की दूरी पर है। सूक्ष्म मत कितने दूर है ऐसे, सोचा और पहुंचे ना। तो जैसी अपनी थाली सामने आती है ना, थाली लेके ऊपर सूक्ष्म वतन में चले जाओ बाबा के पास, है ना। भोग लेके जाती है ना संदेशी, ऐसे ही हम अपनी थाली लेके कहां चले जाएं, बाबा के पास, और बाबा की गोदी में पहुंच गए, ठीक है। फिर बाबा पहले बाबा मैं बाबा को खिलाऊं, फिर बाबा मुझे खिलाए, फिर नहीं, फिर बाबा मुझे खिलाए मैं बाबा को खिलाऊं। तो ये अगर करें तो बहुत अच्छा, नहीं नहीं बोलता। तो मैं कई बार यही बार प्रैक्टिस करता हूं कि जब भी खाना खाने बैठता हूं तो इस रूप में खाना खाएं। फिर भी सबसे मुश्किल काम है खाना खाते समय बाबा की याद रहना, क्योंकि खाने का स्वाद जो आता है ना उसमें बाबा भूल जाता है ना। इसलिए खाना कभी आसक्ति में नहीं खाना चाहिए, जब खाना आसक्ति में खाते हैं तो माया आ जाती है, वो फिर हमको बीमारी पैदा करती है। तो खाना शरीर के लिए आवश्यक है किंतु हमें उतना ही खाना चाहिए और बाबा की याद में खाना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर में विकार जागृत ना हो। इसलिए फिर दूसरा भोजन रास्तिक भोजन, रास्तिक भोजन पराठा पकौड़ा समोसा मिठाइयां, ये रास्तिक भोजन आलस्य पैदा करता है हमारे। और तामसिक भोजन क्या है, कौन कौन सा, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, है ना, ये जो बहुत ही वैसे लहसुन प्याज नॉन वेज, है ना, ये सब तामसिक भोजन में आते। बासी भोजन, बॉटल में पैक भोजन आते हैं जो ना, ये सब तामसिक भोजन है। अचार चाय कॉफी बहुत पीना, है ना, ये सब तामसिक भोजन में आता है। धूम्रपान मद्यपान ये सब ये क्या उत्तेजना पैदा करता है, विकारों को जागृत करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जागृत करता है, चिंता और भय को जागृत करेगा। आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव कर देता है, टेंशन वाले हार्मोन ज्यादा निकलते हैं, तो ऐसा भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा भोजन खा के कोई कहेगा मेरा योग लग जाए, नहीं लगेगा। ऐसा भोजन खा के कोई कहे कि मेरा मैं बहुत अच्छा योगी बन जाऊंगा, तपस्वी बन जाऊं, नहीं बन सकता। मैं पवित्र रहूं, नहीं बन सकता, नहीं रह सकता। तो हमें सिर्फ अगर हमें अच्छा योगी बनना है, पवित्र बनना है, तो हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। कभी आसक्ति से भोजन नहीं खाना चाहिए। संघ की पवित्रता, सिर्फ एक बाबा सत्य है और सत्संग सत्य, सिर्फ एक बाबा है और बाबा की मुरली सत्य है, सिर्फ दो ही चीज सत्य हैं। तो हमें सिर्फ एक बाबा का संग करना चाहिए और दूसरा बाबा की मुरली, मतलब बाबा ने जो कहा है उस पर 100% चलना चाहिए। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा सुबह से, किनका परम सौभाग्य है, जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार कर लेता है, मेरा तन, मेरा मन और मेरा धन सब कुछ बाबा ने स्वीकार कर लिया, तो मेरा परम सौभाग्य है। सबका स्वीकार वो नहीं करता है, राइट? तो अपने को ऐसा बनाएं, इतनी दृढ़ता जीवन में लाएं कि बाबा सब कुछ मेरा स्वीकार कर ले, फिर मेरा तन बाबा के लिए है, ऐसा फील करके चलें। बाबा जैसे मुझे कहेगा मैं इस तन को वैसे ही चलाऊंगा। बाबा कहता बच्चा 3:30 बजे उठो, अच्छा अच्छा बाबा 3:30 उठेंगे। बाबा कहता नहा धो के तैयार, फिर अमृत वेला योग करो, करे किया। फिर बाबा कहता बच्चे नहा धो के तैयार होके फिर मुरली में आओ, अच्छा बाबा मुरली में आ गए। जैसे जैसे बाबा कहे फिर वैसे वैसे चले। मन हम वही संकल्प करें, वही भावना अपने अंदर पैदा करें जो बाबा ने कही है। धन जो बाबा ने कहा उस ढंग से खर्च करें, अपनी मनमत पे खर्च ना करें। तो ये हमें बहुत अटेंशन रखना। तो हमारा संघ, इसके अलावा हम लोग देखते हैं ना जो मैगजीन्स पढ़ना, अखबार पढ़ना, टीवी देखना, ये सब छोड़ देना चाहिए। और कोई मनुष्य क्या कहते हैं वो नहीं करना चाहिए। कोई गुरुजी क्या कहते हैं, कोई कहता है मुद्रा योग लगाओ, कोई कहता है लंबे लंबे सांस प्राणायाम करो। बाबा ने कभी किया क्या? ब्रह्मा बाबा ने कभी किया था क्या? किया था, मुद्रा योग लगाया था बाबा ने, मुद्रा लगाई थी क्या? देखा कभी बाबा को मुद्रा किसी चित्र में? बाबा को बाबा ने कभी प्राणायाम किया क्या? कभी किया? कभी नहीं किया। तो बाबा ने जो नहीं किया वो हमें नहीं करना है, नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी करना है बाबा को, 100% बाबा को कॉपी करें। तो इस तरह से अगर हम चलते जाएंगे, अपनी बुद्धि की पवित्रता, मन की पवित्रता और तन की पवित्रता भी बहुत ध्यान रखनी है। तन की माना जैसे बाबा ने कहा बच्चे से स्नान करना चाहिए, हमको समय पर स्नान करना चाहिए, कैसे हमें कपड़े पहनने चाहिए, है ना। कपड़े का मतलब कोई कलर व्हाइट कपड़े की बात नहीं है, कलर कपड़े भी स्वच्छ पहने, गंदे ना पहने, है ना, ध्यान से स्वच्छ रखें। और हर चीज की कैसे तन की है कि कैसे हम पवित्र रहें, खान पान हमारा पवित्र हो, अन्न पवित्र हो, संग पवित्र हो, है ना। और एक बात मैं बताऊं, हमारे गुणों की पवित्रता, गुणों का भी चाहिए। मैंने पहले भी कहा हुआ है अगर हम एक बार गुस्सा करते हैं 3 दिन तक हमारा योग नहीं लगता है, इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करो। गुस्सा आ रहा है आपको तो गुस्सा मत करो, राइट, रोक दो उसको यहीं पर। इसके लिए बहुत जरूरी कि हर काम में धीरज अपनाएं, धैर्यता अपनाएं, कभी जल्दीबाजी ना करें। कभी किसी ने कुछ कह दिया हम सोचें, तीनों काल लगा के सोचें, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मैंने पहले गुस्सा किया था उससे क्या फायदा हुआ था? कोई फायदा नहीं हुआ, अभी गुस्सा नहीं करना, एकदम रिएक्शन ना करें। क्योंकि गुस्सा एक बार कर लिया तीन दिन तक ना तो अमृत वेला अच्छे से होगा, ना मुरली अंदर जाएगी, अंदर से उदासी आएगी तो फिर आपका खाने पीने में आसक्ति आएगी, खाने पीने में खुशी ढूंढेंगे, सारी अवस्था खराब हो जाएगी। एक बार किसी बात पे मूड ऑफ कर लिया तो 5 दिन तक आपका योग नहीं लगेगा, राइट। इसलिए कभी मूड ऑफ ना करो। बाबा ने क्या कहा कल, ये कल से मेरे मन में बुद्धि में ये बात घूम रही है, जो सदा खुश रहते हैं वो बाबा के सामने घूमते रहते हैं, उनकी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। कल बाबा ने कहा ना, जो बच्चे सदा खुश रहते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, बाबा की आंख के सामने घूमते रहते हैं, बाबा उनको सदा देखता रहता है। तो हम सदा खुश रहें, राइट। और कभी किसी के प्रति शत्रुता का भाव अपने मन में मत रखो। जब तक हमारे मन में शत्रुता का भाव है, अर्थात हमारे दिल में वो आदमी बस गया या वो बहन या भाई बस गया जिससे टकराव है, तो बाबा उस दिल में कभी नहीं आएगा। तब तक हमारा ना योग लगेगा ना मुरली प्रॉपरली बुद्धि में बैठेगी, ना हमारा कुछ भी धारणा प्रॉपर नहीं होगी। तो जिसने जो कुछ भी किया उसको माफ कर दो, अभी माफ कर दो, क्लास में बैठे बैठे ही माफ कर दो, तब हमारा अमृत वेला होगी। तब हमारे चार नियम और चार मर्यादाएं पक्की होंगी। पहला नियम अमृत वेला, बाबा ने कहा अमृत वेला कभी मिस ना करना। दूसरा मुरली कभी मिस नहीं करना। तीसरा सारा दिन अटेंशन रखना, अटेंशन माना बाबा ने आज क्या कहा, जो बाबा ने कहा मैंने किया कि नहीं किया, अर्थात जो मुरली है उस पर मनन करना, माना रिवाइज करना। दूसरा चिंतन करना, चिंतन माना चिंता लगाओ उसको मन में कि मैंने बाबा ने कहा मैंने तो किया नहीं, कैसे करूं, कैसे मेरे जीवन में आए। मंथन करना उसको, घटो उसको, क्या करो घोटो, नहीं समझ आए बाबा से रूरिहान करो, मगन हो जाओ उसको घोटते घोटते, फिर बाबा उसका आंसर देगा। उसका आंसर देने के बाद जो बाबा ने मक्खन दिया आपको, फिर उसका सिमरण, सिमरण माने जो मक्खन मिला उसको फिर कार्य में लगाओ। बाबा ने कहा बच्चे इसका मतलब ये है, आपकी मुरली का आज की मुरली का ये पॉइंट, तो इसका मतलब ये है, तो फिर उसको कार्य में लगाओ। कार्य करते करते सिमर सिमर सुख पाओ, कार्य में लगा करके उसको उसका फायदा उठाओ, उस सुख पाओ, और तब हम स्मृति स्वरूपता था, तब हमारा संस्कार बनता है। जो बाबा ने कहा था हमारे संस्कार में आ जाता है। तो पहले हो गया अमृत वेला, दूसरा मुरली, फिर सारा दिन उसका अटेंशन रखो, और सोने के पहले लेटर लिखो बाबा को। बाबा ने कहा ना कल कहा आज की बात को कल पे मत छोड़ो, आज ही उसको बाबा को बताओ, नित्य निमित्त आत्मा को बताओ, अगले दिन पे मत छोड़ो। तो बाबा को लेटर लिखो, साइन करके 000 पे फैक्स कर दो। उसका बाबा का हॉटलाइन नंबर क्या है, 000। तो मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, आज सारा दिन में जो बीता मल्टीप्लाइड बाय 0। तो बाबा के पास लेटर पहुंच गया। फिर चार्ट भरो याद का सच्चाई से, फिर क्या करो, फिर मुरली के 2 पॉइंट पढ़ो, बाबा को याद करके सोचो। तो 4 ब्राह्मणों के परहेज है, इस बार ये नियम माना 4 गोली है, अमृत वेला पहली गोली, दूसरी गोली मुरली, तीसरी गोली अटेंशन, चौथी गोली अपना हिसाब किताब बाबा को देना, और 4 मर्यादाएं। पहली मर्यादा तो पवित्रता ही है, तो दूसरी मर्यादा शुद्ध सात्विक भोजन, तीसरी मर्यादा सत्संग, और चौथी मर्यादा दैवी गुणों की धारणा। ये 4 परहेज हैं। जितना इन 4 परहेज को हम अपनाते जाएंगे उतना अधिक अच्छा हमारा अमृत वेला होता जाएगा, उतनी अच्छी अधिक हमारी मुरली होती जाएगी, उतना अधिक हमारा सारा दिन टेंशन रहेगा, उतना अधिक हमारा सोने के समय सच्चाई से अपना पोता मेल बाबा को दे सकेंगे, उतना सच्चाई से लेटर लिखेंगे। इसमें सबसे मुख्य बात पवित्रता है। जितना अधिक हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना ही अधिक हमारा अमृत वेला अच्छा होगा, बाबा से कनेक्शन हमारी क्लियर, वॉइसलेस वायर हमारी लग जाएगी, वॉइसलेस कनेक्शन हो जाएगा, बाबा जो चाहेगा हमें तुरंत टच होगा, हम जो सोचेंगे बाबा को टच होगा, और दुखी आत्माओं की पुकार भी हमें टच होगी। कुछ भी दुनिया में कहीं हो रहा हो गलत तो हमें टच होगा, ताकि हम वहां पहुंच के मनसा सेवा कर सके। उतना अधिक हमें मुरली हमारे अंदर एक बार पढ़ लेंगे तो बुद्धि में याद हो जाएगी मुरली, बाबा ने सुबह क्या कहा था, पहले पैराग्राफ में क्या था, दूसरे पैराग्राफ में क्या था, तीसरे पैराग्राफ में क्या था, चौथे पैराग्राफ में क्या था, एक एक पैराग्राफ भी याद हो जाएगा, है ना। उतना मुरली हमको याद रहेगी, उतना मुरली पे चल पाएंगे, और उतना अधिक हमारी सारा दिन टेंशन रहेगी, और उतना अधिक हम सोने के समय सच्चाई सफाई से रह सकेंगे। तो मैं समझता हूं ये 4 नियम 4 मर्यादाएं ये पक्की, हम ब्राह्मण जीवन में इसको पक्का पक्का अपनाएंगे तो हमारी पवित्रता दिन प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और अंत में हम सतो प्रधान, जब सातो एनर्जी भर जाएंगे हमारे अंदर तो हमारी अल्टीमेट स्टेज पावन होगी। पावन का अर्थ क्या है, पावन का मतलब है हम फरिश्ते बन जाएंगे, और फिर बाप के साथ पावन दुनिया शांति धाम में जाएंगे, और फिर पावन दुनिया के वापस आके मालिक बनेंगे। ओम शांति।